الصحابة كيف يعرفوا الكلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. अच्छा, मुबशरा सहाबा के बारे में बात कर रहे हैं इस क्लास में। आजकल वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ही नाम ले दे करके जन्नत की बशारत दे दी, वरना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर नाम दिए तो सारे ही सहाबा को जन्नत की बशारत दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, और भी बहुत सारी बशारतें दे दी, लेकिन नाम ले ले करके सहाबा को बशारतें नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से कहलवाई। ठीक है, सहाबा का जिक्र कुरान मजीद में नाम लेकर के नहीं है सिवाय हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला, ये सबको इंशाअल्लाह पता ही होगा। तो आज हम जिन सहाबी का पढ़ना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की पुप्पी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अनहा के बेटे भी थे, उनके बेटे थे, और जुबैर और अवाम के बेटे थे। अवाम जो है वो इनके पैदा होने से पहले इंतकाल फरमा चुके थे, तो उनके इस्लाम लाने का कहीं पर जिक्र नहीं पढ़ा। अच्छा, आखिरी बात हमने इनकी क्या पढ़ी थी, क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा था इनकी बात से रिलेटेड, आप तो क्या पूछ लेते हैं और कोई बताए जी। रेहान भाई यहाँ पर
बहुत
सही, इन्होंने सवाल बता दिया कि जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत आ जाती है तो उसके अंदर मरने का खौफ क्यों पैदा हो जाता है, तो इसका जवाब भी कोई बता दे। जी दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पूरा करना शुरू करते हैं, इस वजह से उनको मौत से खौफ आना शुरू हो जाता है। और फरहान भाई आप लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। सही, तो माल आ जाने से ऑटोमेटिकली मौत से खौफ शुरू नहीं हो जाता कि बस पैसा आया और मौत से डरना शुरू हो गए, जिसके पास भी पैसा आएगा वो मौत से डरना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ के, खुसूसन इन अशरफ मुबशरा सहाबा की जिंदगी को पढ़ के, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि माल आ जाने के बाद जरूरी नहीं है कि मौत का खौफ पैदा होना शुरू हो जाए, बल्कि ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस बात पे करता है कि अगर माल आने के बाद, क्योंकि माल के बाद क्या होता है कि अब आप जो है वो सारी चीजें खरीद सकते हैं, मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल है हर चीज खरीद सकते हैं, तो अगर आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी शुरू कर देते हैं ना माल आने के बाद, तो फिर मरने से डरना खौफ शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी ख्वाहिशात इस दुनिया के अंदर ही पूरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो ख्वाहिश पूरी करने की जगह क्या बनाई थी, जन्नत। ठीक है, जब आपने दुनिया में पूरी करनी शुरू कर दी तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा जी इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, तो बताएगा कि अगर दुनिया में आपने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी शुरू कर दी तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दुनिया में ही अपनी जन्नत बना ली। राइट, आपने अपनी जन्नत दुनिया में ही बना ली। जब दुनिया में जन्नत बना ली तो फिर आखिरत वाली जन्नत की तो फिर आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। आप समझेंगे भाई जब जन्नत मेरे पास यहीं पर है तो मुझे क्या जरूरत है उस वाली जन्नत में, जाहिर है फिर मरने का नहीं जाएगा, क्योंकि मरने के बाद ही आखिरत वाली जन्नत मिलती है, जब दुनिया में ही जन्नत बन गई। तो जरूरियात पूरी करने के लिए शरीयत ने हमें मना भी नहीं किया, और कुछ शरीयत के दायरे में रहते हुए हम जैसे लोगों के लिए कुछ ख्वाहिशात की हद तक भी कोई मसला नहीं, उसकी भी इजाजत हमारे मशायख, जिनके साथ हम रबते में रहते हैं, तो वो फिर हमें कुछ ख्वाहिशात की भी इजाजत देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी करें, ठीक है। तो ख्वाहिश का बस इस हद तक है मामला, फिर बस अपने मशायख से मशवरे के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लिया करें, उससे ज्यादा अगर करेंगे ना तो फिर वही होगा कि मौत का खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है जितने लिखा था इसमें, या क्योंकि बयान है, बयान को इस किताब में लिखा गया है, तो हमारे थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ से मुराद ये कि आगे पीछे सहाबा कराम ने हिजरतें करी थी, तो जुबैर सुल्तान जब हिजरत करके मदीना मुरव्वरा तशरीफ लाए तो आप सरसन ने मवाखात कायम करी ना, ठीक है। तो इनकी जो मवाखात है ना, यानी इनको जो भाई बनाया, वो दो तीन मुख्तलिफ नाम आते हैं सहाबा के, लेकिन जो ज्यादा मशहूर नाम जो हजरत जी ने भी मेंशन किया वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह का नाम, ठीक है, कि इनकी इनका भाईचारा या इनकी मवाखात जो है वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह के साथ बनाई। अब इसके ऊपर सवाल भी आप ही ने करना है, आपको तो आ समझ में आ गई बात, बाकी कोई आप भी बहुत बड़े हैं सर सवाल के लिए, छोटा बच्चा नहीं इसके ऊपर सवाल करके बताएगा, ये उसके ऊपर सवाल क्या होना चाहिए जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा, सही बता रहे, डिटर्मिनिस्टिक सवाल हो सकता है, आप मतलब किसी को पता हो या कंकल बैठेगा माशाल्लाह उनको पता हो, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रहने से मुलाकात करवाई, यानी पहले इनका हल होता है इन्होंने,
वो फरेश के थे तो करिए ऐसे इनके सामने छोड़
राइट। तो हम तो आज तक ये सुनते आ रहे थे कि जो मक्का मुकरमा से सहाबा आए थे तो उनकी जो भाईचारा बनाया था नबी अलैहिस्सलाम ने वो मदीना मुनव्वरा में रहने वालों के साथ बनाया था, ठीक है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में जो लोग थे वो पहले से स्टैब्लिश थे, घर बार था, कारोबार था, और उनकी जो है वो जमीनें थी, बागात थे, तो यहाँ से जो आए थे ना वो इतने मुफलिस और इतने फुकरा होते थे, उनका इनके साथ भाईचारा बना दिया ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट, यानी वो इनको सपोर्ट कर सकें इनिशियली, ठीक है, जब तक ये खुद स्टैब्लिश ना हो जाए। लेकिन इनकी मवाखात जो है वो किससे करवा रहे हैं, वो एक और कुरैशी साहबी से करवा रहे हैं जो कि खुद मक्का मुकरमा से आए, ठीक है। तो इसमें हिकमत क्या थी, बज़ाहिर जो हमें समझ में आती है कि तफसील हो सकता है उन्होंने लिखी हो कहीं पे उसकी तहकीक नहीं कर सके, लेकिन जो बज़ाहिर समझ में आती है वो ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु जो थे ना, ये थे बहुत ही फकीर किस्म के साहबी, ठीक है ना, बिल्कुल बकरियां चराने वाले थे और इनके पास कुछ होता होता नहीं था, ये कमाई शमाई भी नहीं करते थे, इवन बाद में भी जाकर के ये कमाई नहीं करते थे, ठीक है ना। इनके बारे में एक मशहूर वाक्य कोई बताएगा, इनकी कमाई से मुतल्लिक एक मशहूर वाक्य, वैसे तो एक दो दो हैं लेकिन कोई एक, ये जब इनका इंतकाल होने लगा ना तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जमाना था, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आपको पता ही है कि एक तो खलीफा भी थे और उसके अलावा उनका अपना माशाल्लाह बिलियनियर थे वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के घर पे आए, बिल्कुल आखिरी वक्त था उनका, तो पता था उनको कि भाई इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, तो पूछा कि भाई मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ बैतुल माल से या अपने जाती पैसे से, मैं आपको कुछ दे देता हूं, तो इन्होंने जवाब दिया कि मतलब उन्होंने कहा कि मैं दे देता हूं ताकि आप जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आपके पीछे आपकी बेटियां हैं, ठीक है, तो उन बेटियों के काम आएगा, तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं मेरी बेटियों की इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाकया सिखाई है जो वो हर रात सोने से पहले पढ़ लिया करती हैं, और मेरे आका मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था कि जो सूरह वाकया की तिलावत करके सोता है ना तो उसको रिस्क की तंगी नहीं होती, तो ये सूरह वाकया दे करके गए अपनी औलाद, ठीक है, माल पैसा छोड़ करके ही नहीं गए, सही है। और दूसरी इनकी जो इनकी कमाई से मुतालिक जो बात पड़ी वो ये कि इनकी बेगम कमाती थी वर्क फ्रॉम होम करके, ठीक है, वो कमाती थी और वो घर का खर्चा चलाती थी, ठीक है, बेपरदगी करके नहीं कमाती थी, मर्दों के शाना बशाना काम करके नहीं कमाती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करके कमाती थी, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या करते थे, वो दीन के इल्म का काम करते थे। ये अशरंग वशरा में से तो नहीं थे, लेकिन साबिकून अव्वलून में तो थे, और ये तो फकीह सहाबी थे। हमारी पूरी की पूरी जो फिकह हनफी है, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद रतान की ही फिकह की बुनियाद पर ज्यादातर है। ठीक है, तो इनका काम जो है वो पढ़ना पढ़ाना सिखाना, फतवों के जवाब देना, लोगों को मसले बताना, हत्ता के दूर दूर जा कर करके लोगों को इल्म पढ़ाना था। तो ये ऐन मुमकिन है कि जुबैर सुल्तान जो है ना, वो ऐसे नहीं थे। वो क्या थे, ही वॉज द मसल मैन, राइट, ही वॉज द मैन विद द मसल्स। ठीक है, उनका काम था लड़ना फड़ना, उसको गिरा दिया, उसको मार दिया, उसको कत्ल किया, उसको जो है वो ऐसे ही किया, उसका हाथ तोड़ दिया जा करके, राइट। तो ये ऐसे आदमी थे, और जो है वो इंतहाई शार्प किस्म के इंसान थे, तो ट्रेडिंग भी करते थे। जैसे मदीना मुनव्वरा आए जो है वो जमीनें भी खरीदनी, उसके अंदर काश्तकारी और खेती बाड़ी वगैरह भी शुरू कर दी। तो ये इस किस्म के आदमी थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो है बंदा है ना, ये आया है बस चंद दिन में ही अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं जरूरत है किसी के सपोर्ट की, ये खुद सपोर्ट करने के काबिल है, ये खुद सपोर्ट करने के काबिल है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रहता है, तो जिनकी सपोर्ट का ये हाल था कि कमाई के बारे में तो आपने सुन लिया ना उनका, कि वो कमाई नहीं करते थे। उनके सपोर्ट का एक और भी मसला था, एक सपोर्ट होती है फिजिकल सपोर्ट, राइट, एक फिजिकल सपोर्ट होती है। वो इंसान अपनी टांगों पे खड़ा होता है ना, तो उसकी टांगें उसको सपोर्ट करती हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद की बात क्या मशहूर है, कि इनकी टांगें जो थी ना, वो इतनी पतली पतली थी कि लगता था कि जैसे वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिजिकली भी इनको सपोर्ट करने का मामला बहुत कच्चा था, और मोनेटरीली भी इनको सपोर्ट करने का मामला बहुत ही कच्चा था। तो जुबैर अजान को लगा दिया, जी आप इनको सपोर्ट करें। ठीक है, जी
कि वो करता है सपोर्ट करते हैं सारी क्या कहते हैं और कुछ अंसार कहते हैं दोनों तरफ गई है किसी तो तराजू को सवाल बदलने का और वहाँ दे रहे
हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई एक बात होती थी कि अंसार कहते थे, महाजरीन कहते थे कि अंसार ने हमें सपोर्ट किया है, तो वो हमारी दुआएं लेकर के कामयाब हो गए। इस तरह से क्रेडिट दूसरों को दे देते, लेकिन जुबैर रतान जो है वो गोया के जो है ना पांचों उंगलियां घी में, राइट, या दोनों हाथों से जो है ना उन्होंने कमाए। उन्होंने अपने आप को भी सपोर्ट किया, और उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रतान को भी सपोर्ट किया। तो अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रतान जितने दीन के उलूम की मेहनत कर रहे थे, उसका सारा अजर सवाब जो है वो जुबैर रतान को भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बगैर इल्म की मेहनत किए हुए इल्म का फायदा भी, इल्म का सवाब भी हासिल कर लिया, और उसके अलावा दूसरे सवाब भी हासिल कर लिए जो सदका खैरात के जरिए से हासिल किए जाते हैं। अच्छा, ये हिजरतों के बारे में भी लिखा है कि इन्होंने भी दो हिजरतें की थी, हबशा की भी हिजरत उन्होंने करी थी और फिर मदीना मुनव्वरा की भी हिजरत करी थी। जैसे और भी सहाबा के बारे में पढ़ा है हमने, उस्मान रतान ने भी, तलहा रतान उन्होंने भी दो हिजरतें करी थी। अच्छा, फिर इनका भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इल्म का इनको शौक नहीं था। जब इनको मौका मिलता था तो ये इल्म हासिल करते थे। तो इनको एक मौका मिला, एक दफा उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी मजलिस में बैठते हैं ना, तो उस वक्त तो हम बिल्कुल आखिरत की फिक्र में होते हैं, और हमारा दिल जो है वो अंदर की याद में मगन होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम फरिश्तों के, यानी आपकी मजलिस का तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन जब हम आपस में मजलिसों में बैठते हैं ना, तो फिर वहां पे बैठ के हम दुनिया की भी बातें करते हैं, कारोबार की भी बातें करते हैं, इधर उधर की और भी जो है वो कुछ कुछ से कहानियां भी वगैरह कर लेते हैं लोग, इस तरह की बातें जायज सुलूक में रहते हुए। तो अब उस मजलिस में अगर हमसे जुबान से कोई गलत बात निकल गई, तो हम उसका कफारा कैसे अदा करें। ठीक है, कफारा कैसे अदा करें, कोई बताएगा कि एक कफारा किस चीज को कहते हैं, कफारा का मतलब क्या होता है।
कफारा कफारा
कफारा, ठीक है, तो कफारा जो गलती हो जाती है ना, उसकी कॉम्पेंसेशन को कहते हैं। मतलब क्या कॉम्पेंसेशन का? लफ्ज कफारा, कफारा से निकला, ठीक है। कफारा किस चीज को कहते हैं? मिटा देने को, इरेज कर देने को, या छुपा देने को, ठीक है, छुपा देने को। अब इंसान से गलती होती है, तो आप तो जाहिर माशाल्लाह सुनते रहते हैं कि जब गलती होती है तो हमें क्या करना होता है? तौबा करनी होती है, ठीक है, तौबा करनी होती है, सॉरी करना होता है, माफी मांगनी होती है। तो उससे जो है वो अल्लाह ताला गलती को माफ कर देते हैं। तो फिर कफारा की क्या जरूरत है? गलती के कफारे की क्या जरूरत है? यानी कफारा का आप उसके उसके आप कॉम्पनसेट करने के लिए कोई अमल करें, कोई काम करें, कोई दुआ करें, कुछ और काम करें, इसकी अब क्या जरूरत है?
के वो करते हैं सवाब सवाब सवाब
तौबा करने से गुना गुना बढ़ गया ना, ठीक है। तो अब उसके बाद कफारा अदा करने की क्या जरूरत है? ये तो पूछ रहे हैं जी। अपान भाई ने भी तो क्या बना, तो ऑनलाइन तो मैं देखी है ना, आप मुझे बता दिए ऑनलाइन जवाब है जी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है कि कफारा जो है ना वो एक एक्चुअल फिजिकल काम को कहते हैं, चाहे आप जुबान से कर रहे हो, चाहे आप जो है वो पैसे के जरिए से कर रहे हो, चाहे आप कोई इबादत करके कर रहे हो। तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है इंसान के ऊपर कि अगली दफा उस गलती को रिपीट करने के बाद जो है ना याद आ जाता है कि भाई कफारा भी देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ करना भी पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो बेहतर है कि गलती ना ही करो। और दूसरा एक और भी कि जब इंसान गलती करता है, आप बता। कफारा करने से रियलाइज भी होता है, वही वाली बात कि फिर याद रहता है कि हाँ भाई खाली जुबानी तौबा करने ना जाए ना, वो उतना काफी नहीं है, कफारा भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, गुड, गुना की पेनल्टी वो कफारा कहते हैं, आपको गुना की पेनल्टी को कफारा कहते हैं। तो तौबा तो कर ली, माफी तो मांग ली, और अल्लाह ताला माफी मांगने के ऊपर गुना को माफ कर देते हैं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन कफारा जो है ना, एक तो ये कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जैसे माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया दोनों अदात ने। दूसरा ये भी कि देखें, एक तो होता है गुनाह, ठीक है, और एक होता है गुनाह का असर, ठीक है, एक होता है गुनाह के असरात, जो कि गुनाह की वजह से जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते क्रिएट होने से। गुनाह करेंगे तो उसका एक असर क्रिएट होगा। अब जब हमने माफी मांगनी है ना, तो माफी मांगने से गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन उसका जो असर क्रिएट हो चुका है ना, वो असर खत्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई ड्रग्स करने का जो है वो गुनाह कर रहा है, शराब पीता है या कोई और इस किस्म का गुनाह करता है, अब उसके बाद उसको नदामत होती है, गलती करी मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसने तौबा कर ली, ठीक है। लेकिन क्या तौबा करने से उस ड्रग्स लेने का जो असर उसके ऊपर आया है, क्या वो असर भी खत्म हो जाएगा? असर खत्म नहीं होगा तौबा करने से। शराब पीने से अगर कोई बीमारी पैदा हो गई या कोई और इस किस्म का गुनाह करने से कोई ऐसा मसला क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अब उसका जो असर है ना, वो तो नहीं तौबा करने से खत्म होगा, वो तो एक दुनिया के अंदर एक सिस्टम जारी हो चुका है ना। तो अब उस असर को खत्म करने के लिए कफ्फरा युकफ्फिरु, राइट, कफारतन आपको उसको जो है वो किसी तरीके से पर्ज करना होगा, खत्म करना होगा, दबाना होगा, इरेज करना होगा, ठीक है। तो कफारा वाले कोई अमल करने से ये फायदा हो जाता है कि उसके जो असरात है ना, वो भी फिर कंट्रोल में आ जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल में आ जाता है कम अज कम, ठीक है। अब वो डिफरेंट किस्म के गुनाहों के लिए डिफरेंट किस्म का कफारा है, ठीक है। यहां पर मजलिस के अंदर कोई ऐसी बात कह देने वाला गुनाह की बात हो रही है, तो अब उसके ऊपर इन्होंने पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, इसका कफारा क्या है? कफारा है मजलिस, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ बताई, सुभानकल्लाहुम्मा وبحمدك أشهد أن لا نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ठीक है, ये दुआ तुम पढ़ा करो, इससे जो है ना वो कोई गलत काम ऐसा हो गया मजलिस के अंदर, अल्लाह ताला की तरफ से गफलत हो गई, आखिरत की तरफ से गफलत हो गई, कोई ऐसी बात कह दी, तो अल्लाह ताला उसको भी तुम्हें माफ कर देंगे। तो कफारे का एक जनरल कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया इस बहाने से, ठीक है। अगरचे के आप कहेंगे ये तो खाली दुआ पढ़ ली और वो तो हम वैसे तौबा करके दुआ मांग लेते माफ हो जाते ही, ठीक है, ये भी एक दुआ ही है। इसके अंदर भी आप कोई पेनल्टी तो नहीं पे कर रहे हैं, कि आप जो है वो इबादत तो नहीं कर रहे इसको कफारे के तौर पर, दुआ ही है। तो इस किस्म के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह की दुआ बता दी और ये कफारा हो गया। लेकिन आपको असल में बताना मकसूद था कॉन्सेप्ट ऑफ कफारा, ठीक है, कि जब तौबा से हर गुना माफ हो जाता है तो फिर कफारा अदा करने की क्या जरूरत है। तो फरमाया कि जो बंदा ये दुआ पढ़ देगा तो मजलिस में अगर कोई गलती भी हुई होगी उसका ये कफारा बन जाएगा। चुनाच उम्मत को ये जो मजलिस के कफारी की दुआ मिली ये सैयदना जुबैर रजी अल्लाह तआला की वजह से, ठीक है। तो ये एक जुबैर तआला का इल्म हासिल करने का एफर्ट था जिससे कि उम्मत को फायदा हो गया, सबको ये दुआ पता चल गई। अच्छा, फिर उसके बाद इनको जो शहादत की खुशखबरी मिली उसका वाकया लिखा है। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम अपने कुछ सहाबा के साथ उहद पहाड़ पे खड़े हुए थे, पहाड़ पर थे, वह पहाड़ का एक्चुअली नाम यहाँ पे नहीं है लेकिन तालिबन मोस्ट लाइकली बहुत पहाड़ ही था अंदा वाला। तो बहुत जो है ना वो हिलने लगा, ये भी वाकया है कि इस वाकये के ऊपर भी बहुत जो है वो हिलने लगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि ओहद तू रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और बाकी शुहदा है। एक नबी, एक सिद्दीक और बाकी शुहदा, तो कौन कौन थे? नबी अलैहिस्सलाम थे, हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है। तो ये सारे के सारे सहाबा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने शहादत की खुशखबरी सुनाई, पहले से बता दिया कि तुम सब के सब जो है ना वो शहीद हो गए। अच्छा, फिर एक वाकया है इनकी वालिदा से मुताल्लिक, कि जब हमने शुरू में आप लोगों को इनका थोड़ा सा फैमिली स्ट्रक्चर भी बताया था, तो क्या बताया था, इनकी वालिदा तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा है, ठीक है। सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई कौन थे? सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई साथ में करते हैं हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, ठीक है ना। और ये भाई जो थे एक ही मदर से थे, ठीक है ना, यानी अब्दुल मुतलिब दादा ख्वाजा अब्दुल मुतलिब की जो है वो अगर एक से ज्यादा बीवियां थी तो एक बीवी जो थी ना उनसे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला पैदा हुए और हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला पैदा हुए। ये तीन जो औलादे हैं ना वो एक मदर से, एक वाइफ से पैदा हुई और बाकी औलादे जो है वो दो या दो से ज्यादा उनके अलावा वाइफ से पैदा, ठीक है। तो ये गोया के सगे भाई बहन थे। अल्लाह ताला ने इन तीनों को इस्लाम की शहादत बताई, ठीक है। बाकी जो थे ना उनमें सबको इस्लाम की शहादत अदा नहीं हुई, ठीक है, बल्कि उनमें से किसी को भी नहीं हुई, बाकी किसी चर्चा का नहीं है, ठीक है। चचाओं चचाओं के बेटों को, औलादों को हुई, बाकी किसी किसी को नहीं। ये तीनों के तीनों जाए इस्लाम में रात को, अब्बास रतान, अब्दुल रतान और सफिया रतान, ठीक है। एक और है आतिका, उनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो मुसलमान हुई थी कि नहीं हुई, ठीक है। लेकिन बाकी जो चार थी ना, क्योंकि टोटल छह थी, तो सफिया रतान के बारे में कंफर्म है, आतिका के बारे में कंफर्म नहीं है शायद मुसलमान हुई शायद नहीं, बाकी जो चाह रहे हैं उनके बारे में कंफर्म है कि वो मुसलमान नहीं, ठीक है। अच्छा, तो उहद की लड़ाई में आपको पता ही है कि हमजा रजी अल्लाह तआला को वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, शहीद किया और शहीद करने के बाद वहशी तो चले गए, ठीक है, क्योंकि उनका काम बस यही था कि तुमने या तो अली को मारना है या तुमने जो है वो हमजा को मारना है। ये हिंद ने जो है वो उनको बाकायदा उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं तुम्हें ये दूंगी इन दोनों में से किसी को मारोगे तो मैं तुम्हें ये सारा इनाम दूंगी। तो इन्होंने तो नेजा मारा, हमजा शहीद हो गए, वो तो चले गए ना। लेकिन हिंदा आई और उन्होंने आकर के फिर लाश को मुसला किया, कान काटे, नाक काटी और चीरा, पेट को जो है वो खोला, अंदर से जो है वो जिगर निकाला, उसको चबाया। इमेजिन कर, एक इंसान के बॉडी पार्ट्स को निकाल करके जो है वो आप अपने दांतों से रॉ चबा रहे हैं, पका के भी नहीं खा रहे, ठीक है। तो ये हशर किया मतलब समझा की जो नियत थी उसका। इस हालत में वो पड़े हुए थे मैदान जंग के अंदर, और हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना वो तशरीफ ले आए, ठीक है। वो जा रही थी मैदान जंग की तरफ, उनको पता था कि मेरे भाई यहाँ पर है, शायद उन्होंने सुन भी लिया होगा कि हमजा शहीद हो गए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम दूर मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस इतना पता चला कि कोई औरत है जो कि मैदान जंग की तरफ जा रही। ये जंग ओहद का वाक्य है, ठीक है। पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम पहचान नहीं सके कि कौन जा रही है। इससे क्या पता चलता है कि कुछ तो उन्होंने कवर अप, पहले कवर अपने आप को पहले से किया हुआ था, इतना तो कवर पहले से किया हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी फूफी को जो कि तकरीबन बराबर एज की ही थी उनको नहीं पहचान सके। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि कोई है, जाकर के उस औरत को रोको, वो कहाँ जा रही है, ठीक है। तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि बेटे थे, और बेटे और माँ का तो एक अलग किस्म का ताल्लुक होता है, तो ये पहचान गए, इतना दूर से देख करके पहचान गए, ये मेरी अम्मी जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने फरमाया नबी सर मैं जाकर के रोकता हूँ उनको, ये सफिया है, मेरी वालदा है, ठीक है। तो नेचुरली फिर ये गए और जाकर के उन्होंने अपनी वालदा से कहा आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। इन्होंने वही वाले काम किए जो कि अक्सर आप लोग भी करते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग, जब किसी की इसलाह करनी होती है ना तो कहते हैं आप ये काम नहीं कर सकते, राइट। ये गलती होती है, इस गलती को जो है वो ठीक करने की जरूरत है। कल हमने बच्चों को कुछ को बताया भी था, ये वाली बात छोटे बच्चों को बताया था कि आपने अपने किसी दोस्त की इसलाह करनी है ना, आपने ऐसे नहीं करनी कि आप ये काम ना करें, ये गलत काम है, बल्कि आपने उनको ये बताना है कि अब्बू ये कह रहे थे कि ये काम ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। भाई अब्बू ने आपको कहा है ना, तो अब्बू का नाम लेकर के उनको बताएं कि अब्बू ने कहा है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए चलता है, बड़ों के लिए तो हम उल्टा मना करते हैं कि नाम बताया करो, ऐसे नहीं करते। दरमियान वाले बच्चों के लिए, उससे ज्यादा बड़े हो जाए तो फिर उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है आप बता सकते हैं, डिपेंड करता है, ये हर बंदे के हिसाब से अलग मामला होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, अम्मी आप नहीं जा सकती आगे, तो अम्मी भी आखिर अम्मी थी, उन्होंने कहा तू कौन होता है भाई मुझे रोकने वाला, ये जमीन तुम्हारी जमीन है, मैं तुमसे पूछे बगैर आगे नहीं जा सकती। वो भी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी, उन्होंने तो इनको जुबैर बनाया था जैसे कि वो जुबैर थे, ठीक है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं जाऊंगी जिधर जाना चाहूंगी, तुम्हारी जमीन है कोई, ठीक है। तब उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अम्मी नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया कि आप आगे नहीं जा सकते। जब सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुना, क्या ठीक है हुक्म आ गया है, उसकी तो अतात मैंने करनी है, तो वो आगे नहीं गए, ठीक है। और उन्होंने फिर जुबैर को कहा कि मैं अपने भाई के लिए दो चादरें घर से लेकर के आई थी कि उनके अंदर उनको कफन दिया जाए, ठीक है, तो तुम ये चादरें ले लो और इनके अंदर उनको कफन दे देना। तो जुबैर उन्होंने वो दो चादरें अपनी वालदा से ले ली, और सफिया जो है वो देखे बगैर फिर वहां से चली गई, ठीक है। तो अब इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि भाई इवन दो के पर्दे का हुक्म तो बाद में आया था, लेकिन जो शरीफ घराने की औरतें होती थी ना, वो उस जमाने में भी अपने आप को अच्छे तरीके से रखे बाहर निकलती थी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि नाउज बिल्ला बिल्कुल ही कोई कम कपड़ों के अंदर बाहर निकल रही है या बिल्कुल ही। पर्दे का हुक्म जब आया है तो उसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकलना भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, घर से बाहर निकलना भी जरूरतन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और निकलती भी थी तो ऐसे निकलती थी कि सड़क के साइड पे चल रही होती थी, ठीक है, दरमियान में नहीं चल रही होती थी, इतना साइड में चलती थी कि उनके कपड़े जो है ना वो दीवार से रगड़ करके छिलना शुरू हो जाते थे, खराब होने शुरू हो जाते थे, ऐसे वो साइड पे चला करती थी। ये पर्दे के हुक्म के बाद आया, ठीक है। और पर्दे के हुक्म में जो जहां और अल्लाह ताला के अहकाम आए हैं वहां पे ये भी हुक्म आया था, करना फी बुयूतिकुन, कि तुम अपने घरों के अंदर करार रखो, तो अब ये ज्यादातर घर के अंदर ही रहना पसंद करती थी, सिवाय किसके के जब जरूरत हो। मजबूरी नहीं कह रहे, ये नहीं कि मजबूरी में खाली बाहर निकलेंगी, बहुत ही कोई मुसीबत आ जाए तब बाहर निकलेंगी, नहीं, जब जरूरत पड़े तब बाहर निकलेंगी, अपने हस्बैंड के साथ निकलेंगी, अपने बहन रिश्तेदार के साथ निकलेंगी, ठीक है, या कोई और ऐसे जरूरत का काम है उसके लिए निकलेंगी। जैसे कि उस जमाने में घरों के अंदर बाथरूम नहीं होते थे, कजाए हाजत भी उससे बड़ी और हमारी फिजिकल जरूरत और क्या है, ठीक है, कजाए हाजत के लिए भी बाहर निकलती थी, ठीक है, लेकिन छुप छुपा करके ही निकलती थी, पर्दे के अंदर निकलती थी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ लोग जो है जिनका मिजाज थोड़ा सा ऐसा होता है ना, उस साइड पे होता है, नहीं, औरत को तो बाहर निकलना चाहिए, औरत को तो जो है ना वो मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए और मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए, यानी बच्चों को भाड़ में डालो जिन्होंने बड़े होकर के मुल्क का शहरी बनना है, राइट, उनको जंग में फेंको और खुद निकल करके जाए मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा अदा करो, ठीक है। तो ये जाहिल किस्म के लोग होते हैं या ये के शैतान किस्म के लोग होते हैं। तो अब वो जो है ना वो हर वक्त इसी में तुले रहते हैं कि सहाबियात तो जो है ना जंग में जाके लड़ती थी, जंग में निकलती थी और लड़ती थी, जंग में निकलती थी और लड़ती थी। वो भाई कुरान का हुक्म ज्यादा अफजल है कि किसी तारीख की किताब का वाकया ज्यादा अफजल है, वो भी वाकदी की किताब जिसके के पता भी नहीं है कि वो शिया है कि वो सुन्नी है, राइट, फुतुहात शाम में किताब है वाकदी की लिखी हुई, उस बंदे का भी नहीं पता कि वो क्या है, और फिर उस किताब का भी नहीं पता कि उसके अंदर कितनी ऑथेंटिक चीजें जो है जो हम तक पहुंची हैं। किताबों को दरमियान में चेंज किया गया है, किताबों को दरमियान में चेंज किया गया है। ये यहूदी जो है पता है ना सबको, अब्दुल्ला बिन सबा के जमाने से दीन को चेंज करने की मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लामा वाकदी अगर वो शिया नहीं भी थे, उन्होंने अच्छी किताब लिखी भी, तो उसको चेंज करने में क्या तकलीफ थी, क्या मुश्किल थी उसको चेंज करना, भाई हम तो कुरान को फॉलो करेंगे ना, हम तो अहकाम कुरान मजीद से देंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम की सही अहादीस से अहकाम लेंगे, उनको छोड़ करके आप तारीखी किताबों से अहकाम ले रहे हैं, अगर नहीं पता गलती हो गई तो वो और बात है, लेकिन जब दलील सामने आ गई तो उसके बाद फिर आप इस तरह की बेवकूफी औरतों के ऊपर इसरार नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि औरतें तो लड़ती थी और जिहाद में लड़ती थी और ये घोड़े की पीठ पे जाकर के ये करती थी और वो करती थी, ठीक है। अच्छा, अगर लड़ती भी थी, अगर, ठीक है, क्योंकि अंकल भी बैठे होते हैं, आंटियां भी सुन रही होती हैं, फिर वो आप छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी है क्लास को सुनने वाले, अगर लड़ती भी थी, अगर लड़ती भी थी, लेट्स अज्यूम कि वो लड़ती थी, वरना तो करना फी बुजुर्ग करना, ये अल्लाह का हुक्म आ गया, इसकी खिलाफ वर्जी तो फिर कुफर और इसयान और फिस्क बन जाता है कि नहीं बनता है? और कुरान क्या कहता है, वकर रहा है कुमर कुफर और फतूक और इसयान, सहाबा के दिलों में कुफर और फिस्क और इसयान की नफरत पैदा कर दी अल्लाह ताला है, उधर से अल्लाह का हुक्म आ रहा है करना फी बुजुर्ग, इधर से जाके वो लड़ाई में लड़ रही है, अल्लाह का हुक्म किधर गया, फिर ये अल्लाह के बताई हुई बशारतें किधर चली गई, ये अहवाल किधर चले गए सारे के सारे, ठीक है ना। तो वो करती वरती नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर करती भी थी इस तरह के बाहर निकल के काम करना, तो देखते नहीं हो कि वो क्या जमाना था, वो कौन सा जमाना था, वो खैरुल कुरून था, वो खैरुल कुरून था, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना, सहाबा और सहाबियात का जमाना, जिसके अंदर एक औरत ने सफर किया, वो जो भी उसकी मजबूरी थी उसने सफर किया, अकेले सफर किया, कहां से, यमन से या बहुत ही कहीं दूर से जो है ना, या इराक के किसी जगह से सफर किया और मदीना तैयबा आई अकेली। उमर तो ने पूछा, तुम अकेली आई हो, क्या हुआ रास्ते में तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था सब मेरे सगे हैं, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं था, मैं इतना लंबा सफर, उस जमाने में ट्रेनें नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होते थे, राइट, उस जमाने में जगह जगह जो है फौज की चौकियां नहीं बनी होती थी, रास्ते में जो है वो आपको साथ ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी नहीं होती थी, लेकिन ऐसा जमाना बन चुका था कि उस औरत को किसी ने नजर भी उठा करके नहीं देखा, ऐसा सेफ्टी का जमाना बन चुका था, उमर फारूक का जमाना था, मामूली जमानत को, तुम आज के जमाने को उस जमाने पे कयास करते हो, आज भी जो है निकल के अगर लड़ना चाहिए और ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए, वो भी क्या, क्योंकि साहबियात करती थी, क्या नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में साहबियात मस्जिद में नहीं आती थी, आयशा सिद्दीका रतान और उमर फारूक ने उस जमाने में भी कहा, अब आप घर में नमाज पढ़ें, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। आप नबी रसूलुल्लाह को सुनने आती थी ना, नबी रसूलुल्लाह को देखने के लिए आती थी ना, अब तो नबी रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सहाबिया जो मस्जिद में आती थी वो सिर्फ मस्जिद नबवी में आती थी। मस्जिद मदीना मुनव्वरा में सिर्फ एक मस्जिद नबवी नहीं थी, और भी मस्जिद थी। किसी मस्जिद में सहाबियात नहीं जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ मस्जिद नबवी में आती थी। क्यों आती थी? नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आती, नबी अलैहिस्सलाम को सुनने के लिए आती। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब कह दिया अब नहीं, अब आप घर पे रहे, पर ना फी बुयूत कुल्ला, अब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जमाने के हिसाब से हुक्म लगाया जाता है। आयशा सिद्दीका और उमर फारूक ने हुक्म लगाया, चेंज कर दिया हुक्म, अब नहीं आना आपने, क्योंकि जमाना बदल गया, हालात बदल गए। उसी तरीके से 1400 साल के बाद जो है अब कह रहे हैं नहीं जी, साहबियात जो है वो ये करती थी वो करती थी। पहली बात तो उसकी कोई आप पक्की दलील ला भी नहीं सकते, जो कि कुरान से ना टकराती हो, ऐसी कोई दलील आप ला भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप रिज्यूम कर भी लें कर निकल, तो भाई वो जमाना भी तो देखो ना, किस किस्म का वो जमाना था, और आज का जमाना ही देखते। बात यही है, हमें कुछ नजर ही नहीं आता, अंधे बहरे गूंगे, हमें पता ही नहीं कि हमारे जमाने में हो क्या रहा है। ठीक है, हमने आंटियों को भी नसीहत फरमाई, तो अपने बारे में फरमाने के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमने आंटियों को भी नसीहत करी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खोल आंख पर्दे से नहीं खोल बल्कि आंख खोल, खोल आंख जमी देख फलक देख फिजा देख, देखो तो दुनिया में हो क्या रहा है, जाने की जरूरत नहीं है, खबरों को ही कम से कम तो पढ़ दो, लोगों से पूछ ही लो अहवाल क्या हो रहे हैं दुनिया के अंदर। और दूसरा मिसरा जो है वो हम आपके सामने अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, तो हम इसका दूसरा जुमला ये बनाते हैं, मगरिब से उभरते हुए जुलमत को जरा देख, खोल आंख जमी देख फलक देख फिजा देख, मगरिब से उभरे हुए, उभरते हुए नहीं उभर चुका भर चुका सारा का सारा, छा चुका पूरी दुनिया के ऊपर, जुलुमत को जरा दे कि क्या दुनिया के अंदर जो है उन्होंने बेहयाई और बदतमीजी और बेशर्मी फैला के रखी हुई है। इस जमाने को खैरुल कुरून के ऊपर कयास ना करो, अपने ख्वाहिशात को जो है ना वो दीनी पजामा पहनाने की कोशिश ना करो, दीनी जामा या पजामा पहनाने की कोशिश ना करो। ठीक है, नाराज होते हो तो हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है नाराजगी की, अलहमदुल्ला। ठीक है, बच्चों से बात नहीं कर रहा, आप नाराज नहीं रहेगा। ठीक, तो उन्होंने लिखा कि इनकी और फुफो भी मुसलमान हुई थी, कोई दलील बता दिएगा, हमने किताब में तो नहीं पढ़ा था, आप बता दिएगा तो फिर अच्छा इंशाल्लाह अगली दफा उसके साथ भी लोगों को बता देंगे। अच्छा, टाइम जो है वो हो चुका है, यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं। آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.